कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है, वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता हम वंदनम पर हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एक कोट, इससे आज की शुरुआत करें। अ बिजी लाइफ मेक्स प्रेयर हार्डर, बट अ प्रेयर मेक्स अ बिजी लाइफ ईजियर। फ्रॉम ईमेल टू नीमेल, प्रेयर इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ द ह्यूमन हार्ट फॉर कम्युनिकेटिंग विद द डिवाइन हार्ट। प्रे सिग्निफाइज प्लीड, रिपेंट, अप्रिशिएट एंड हियर। तो वंदनम के ये चार स्वरूप, दैन्यता, कृतज्ञता, स्तुति, प्रार्थना। पिछले हफ्ते हमने प्रार्थना, जिसमें भगवान से याचना और अपनी ओर से वचनबद्धता, रिक्विजिशन एंड कमिटमेंट, तो ये इसका कॉम्बिनेशन है प्रार्थना, डिपेंडेंस और एक्शन। तो जब हम याचना इसके संदर्भ में जानना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें पहचानना है कि क्या मांगना चाहिए, फिर किनसे, कब और फिर कैसे। तो हमने चर्चा की पिछले बार, सिलेक्टिव फेथ कैन बी डिसेप्टिव फेथ। कैसे? अक्सर जब कोई भौतिक इच्छाओं से युक्त याचना करता है भगवान से, तो भगवान की जो शक्ति है, पावर ऑफ गॉड, उससे अपेक्षित वो अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। परंतु भगवान अपनी शक्ति के साथ साथ न केवल अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते हैं, बल्कि भगवान की जो नियत है वो भी उन याचनाओं को पूरा करने में भगवान लगाते हैं। तो ये दो एक्सट्रीम्स, ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फॉलोइंग और ब्लाइंड रिजेक्शन, हमने कुछ उदाहरण लिए। इफेक्टिव प्रेयर्स, अद्वैताचार्य, गजेंद्र, द्रौपदी और अंत में कुंती महारानी। तो कुंती महारानी की जो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, जहाँ कुंती महारानी अपनी चेतना की तुलना वो गंगा से कर रही है या नदी से कर रही है। गंगे वोघम उदनवती, वही में अनन्य या विषया, वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, हे मधुपते, हे भगवान श्री कृष्ण, आप समंदर के समान हो और मेरी चेतना गंगा नदी के समान है। गंगा नदी जैसे गोमुख से उद्धृत होती है, वहां से जो उद्गम स्थान है गंगा देवी का, हमें एक सौभाग्य था, एक वर्ष हम वहां गए थे गोमुख। तो वहां से जो भी नदी आप लो, यहां पर गोदावरी है, उद्गम स्थान से जैसे ही बहना प्रारंभ करती है गंगा, किस दिशा में, सोचिए कहां है गोमुख और कहां गंगा सागर, बंगाल की वहां पर जाकर मिलती है वो गंगा देवी। नॉन स्टॉप, इतने पूरे रास्ते भर बिना रुके। तो बहुत सुंदर उदाहरण कुंती महारानी ने ये गंगा देवी का दिया है। तो हमने इस पे फोकस किया था कि नदी की तुलना जो कुंती महारानी दे रही हैं चेतना से, मायावादी किस पर फोकस करते हैं, मर्जिंग इन द ओशन, और कुंती महारानी जैसे भक्त वो किस पर फोकस करते हैं, फ्लोइंग ऑफ द रिवर, अ रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स ओशन, नथिंग होल्ड्स द रिवर बैक, रिवर होल्ड्स नथिंग बैक। हमें शुद्ध प्रार्थना भगवान को अर्पित करनी है तो ये दो चीजें होनी चाहिए हमारे में, तब जाकर वो प्रार्थना शुद्ध होगी। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने इस मालवाहक जहाज जलदूत में श्रील प्रभुपाद थे, और श्रील प्रभुपाद ने प्रार्थना अर्पित की मार्किने भागवत धर्म, वो एक भजन है प्रभुपाद द्वारा लिखित, वो प्रार्थना के रूप में वो भजन श्रील प्रभुपाद ने इस मालवाहक जहाज जलदूत में लिखा, और उसमें श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से माते, काष्टेर पुतली, अपने आप को कठपुतली का उदाहरण लेते हुए अपने आप को कठपुतली कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, और वो भगवान से याचना कर रहे हैं कि भगवान मैं कठपुतली हूं आपके हाथ में, आप कठपुतली कार हो, यू आर द पपिटियर, आई एम द पपेट, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से माते। बहुत सुंदर उदाहरण है कि जैसे कठपुतली जो होती है पूरा कंट्रोल उस कठपुतली कार के हाथ में होता है। तो कोई यदि ये प्रश्न पूछे तो फिर कठपुतली का कोई योगदान है, कोई पूछे कि यदि वो कठपुतली कार, आप लोगों ने देखा है कठपुतली शो कभी, कठपुतली जानते हैं ना, तो वो जो पपिटियर होता है वो दिखाई नहीं देता है, पतले पतले उसके वो धागे होते हैं, वो धागे भी दिखाई नहीं देते, ऐसा लगता है कि वो बस वो जो कठपुतली है वो अपने से सब कुछ कर रही है। तो अब ये प्रश्न यदि पूछा जाए कि जो उदाहरण श्रील प्रभुपाद ने अपनी प्रार्थना में दिया, तो एक भक्त क्या पूर्ण रूपेण भगवान पर जैसे कठपुतली निर्भर होती है वैसे निर्भर होता है, या फिर उसकी तरफ से जैसे हमने चर्चा की डिपेंडेंस एंड एक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो कठपुतली में कहां एक्शन दिख रहा है आपको, पूरा डिपेंडेंस नहीं लग रहा है, कठपुतली कार के ऊपर पूरा डिपेंडेंस नहीं लग रहा, क्या खूबी है कठपुतली में, क्या खूबी है कुछ है, कठपुतली को जब बनाया जाता है तो उसको किस हिसाब से बनाया जाता है कि उसके जितने भी जॉइंट्स हैं अलग अलग यहां से जितने भी जॉइंट्स हैं वो सारे लचीले होने चाहिए, जो ये कपड़ों की दुकान के बाहर पुतले होते हैं उनको धागा बांधो, नहीं नाच पाएंगे वो। वॉट इज टू द क्रेडिट ऑफ द पपेट, द फ्लेक्सिबल फॉर्मेशन, उसका जो फॉर्म है वो जो फ्लेक्सिबल बना हुआ है वो है, allowing the puppeteer to make it dance. तो श्रील प्रभुपाद ने वो उदाहरण तो दिया, अब अमेरिका में जाके प्रभुपाद किए क्या, जिस क्षण श्रील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे उस क्षण से आप अगर लीलामृत पढ़ोगे, हालांकि तैयारी तो बहुत पहले से चल रही थी प्रभुपाद की, प्रभुपाद एक मिनट आइडल नहीं बैठे थे, 65 से 77, 12 साल पूरे इस्कॉन की स्थापना 12 साल में। और प्रभुपाद का कन्विक्शन क्या था 1966 में टॉमकिन स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद बैठे हुए हैं, कोई नहीं आ रहा है, कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं, कोई फॉलोअर्स नहीं। प्रभुपाद टॉमकिन स्क्वायर पार्क में कीर्तन करते थे और उस पार्क में घूमते फिरते, तो एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद बेंच पे बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति आकर बैठा, पूछता है प्रभुपाद का सन्यास वेश देखकर, वेर आर यू फ्रॉम, व्हाट आर यू डूइंग। प्रभुपाद ने अपने आप का परिचय कैसे दिया, सो आई एम फाउंडर आचार्य ऑफ दिस इंटरनेशनल सोसाइटी। इंटरनेशनल सोसाइटी फाउंडर आचार्य, देर आर मोर देन 108 टेम्पल्स ऑफ दिस सोसाइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देर आर थाउजेंड्स ऑफ भगवद गीताज एंड बुक्स बींग डिस्ट्रीब्यूटेड। ये था प्रभुपाद का विश्वास। इमेजिन कि कोई ऐसा प्रभुपाद, जैसे कि प्रभुपाद सामने देख रहे हैं इस्कॉन के सारी एक्टिविटीज, वहां पर वो बेंच पे बैठे हुए, कुछ नहीं उनका, लेकिन विश्वास, उनकी श्रद्धा। अच्छा, तो इसमें यह समझ में आ रहा है कि यदि इतना विश्वास, तो फिर प्रभुपाद को प्रयास करना पड़ा। हाँ, वो पूरी इतनी मोटी लीलामृत आप पढ़ोगे, पूरा प्रभुपाद का प्रयास। सो प्रभुपाद इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ परफेक्शन इन डिपेंडेंस एंड एक्शन। प्रार्थना, उन्होंने अपने आप को एक कठपुतली के रूप में प्रदर्शित करते हुए की, उसके साथ साथ उन्होंने आलस्य नहीं दिखाया। तो ये जो प्रभुपाद जलदूत में गए, तो इसके संदर्भ में ये उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए। वंदनम हम इस मुद्दे पर हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं किस प्रकार की होनी चाहिए। जैसे कि जब कोई सेल बोट, पता नहीं हिंदी में सेल बोट को आप समझते हैं ना, जो जिसमें ईंधन वगैरह नहीं लगता, जो समंदर के हवा और जो लहरें हैं उसके बहाव के अनुसार जो ये नाव चलती है वो है सेल बोट। तो अब कल्पना कीजिए, जैसे कि कई बार बहुत सारे समंदर एक साथ मिलते हैं। हम लोग गए थे रामेश्वरम से थोड़ा आगे है धनुषकोडी, तो वहां पर तीन समंदर एक साथ मिलते हैं, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। तो तीन लहरें आपको ऐसे मिलती हुई दिखेंगी वहां पर। तो कई बार देखा जाता है कि ऐसे समंदर, दो तीन समंदर मिलते हैं एक साथ, और हाई टाइड लो टाइड के वजह से कई बार समंदर की कुछ लहरें एक दिशा में जाती। जैसे मान लो कि भारत से समंदर की लहरें ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही नीचे। अब आप यदि समंदर में हो सेल बोट लेकर और आप ऑपोजिट डायरेक्शन में सेलिंग करना प्रयास करोगे, बहुत कठिन है। इसलिए आप यदि उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो लहरें जा रही उस डायरेक्शन में आपकी सेल बोट रखोगे, तो बहुत आसानी से आप आपकी बोट सेल कर सकते हैं। तो जो हमारे पूर्वज आचार्य, जैसे कि कुंती महारानी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, शिल प्रभुपाद, इनकी जो प्रार्थनाएं हैं, जब इनकी प्रार्थनाओं के फ्लो में हम अपनी बोट रखेंगे, अब आपको समझ में आ रहा है ये सब एग्जाम्पल की भूमिका क्यों थी। इनके फ्लो में जब हम अपनी बोट रखेंगे तो बहुत आसानी से हमारी बोट सेल हो सकती है। जैसे कि मैं पिछली बार चर्चा कर रहा था कि महाराज कुलशेखर, उन्होंने वो अपनी एक प्रार्थना में वो अपनी जिह्वा से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रावर्तीय प्रांजलैर जिह्वे नारायण गोचराणी नाम, अपनी जिह्वा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जिह्वा, मैं घुटने टेक टेक कर, मैं जिह्वा, खुद की जिह्वा, मैं जिह्वा घुटने टेक कर याचना करता हूं, कृपा करके अब तो भगवान का नाम ले लो। फिर हमने उदाहरण लिया गोविंद दास, उन्होंने अपने मन से प्रार्थना की है, भजहुरे मन श्री नंद नंदन, हे मन मैं याचना करता हूं कि श्री नंद नंदन, भगवान श्री नंद नंदन उनके विषय में थोड़ा बहुत तुम सोचो, मन तुम अपने आप को उनमें लगाओ। तो अपने आप को इन सब से थोड़ा अलग कर कर ये लोग जो प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं, बहुत विशेष है इस प्रकार की प्रार्थनाएं। जैसे अक्सर हमारे आचार्य जो सिखाए हैं उनके अनुसार मुझे एक जो प्रार्थना बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है कि जब राधा मदन गोपाल जी के सामने आकर मैं कहता हूं कि हे श्री श्री राधा मदन गोपाल जी, आप कृपा करके मुझे मेरी भौतिक इच्छाओं से बचाइए, हमें कोई बहुत कि मुझे आध्यात्मिक संसार में आप ऐसी मंजरी बनाइए कि जो श्रीमती राधा रानी का गजरा बना रही है, समझ में ही नहीं आएगा ये सब कुछ, उनको भी नहीं समझ में आएगा कि गजरा आध्यात्मिक संसार गोलोक वृंदावन, यहां पर अभी तक मिसल पाव से पिंड छूटा नहीं है। तो हमारी प्रार्थनाएं जो होनी चाहिए, ये आचार्य हमें क्यों सिखा रहे हैं, ऐसे जिह्वा से प्रार्थना कर रहे हैं, मन से प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब ये इसलिए सिखा रहे हैं कि हम अपनी औकात में प्रार्थनाएं करें। इसलिए यहां पे आपके समक्ष हम अब रखेंगे लॉज बिहाइंड प्रेयर्स, अलग अलग इनके कानून हैं, नियम हैं, क्या लॉज हैं प्रेयर्स के, जो उसको संक्षिप्त रूप में जो जो हमने चर्चा की। सबसे पहला लॉ है द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, कोई भी वस्तु आप हवा में फेंकना चाहो नीचे गिरेगी, स्वाभाविक रूप से वो वस्तु गुरुत्वाकर्षण के वजह से नीचे, इट विल ग्रेविटेट डाउन। तो इसे क्या समझ में आता है, इसे ये समझ में आता है कि हमारी प्रार्थनाओं में जब तक हम ह्यूमिलिटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी, until and unless there is law of humility in our prayers, law of gravitation, there will not be levitation. Levitation kya hai, hindi mein kya bolte hain, yog mein karte hain na, yog siddhi se wo yogi hote hain jo wo apne aap ko 2-3 foot हवा में वो तैरते हैं, हवा में तैरते हैं, उसको लेविटेशन बोलते हैं। सो अंटिल एंड अनलेस यू ग्रेविटेट यू वोंट लेविटेट, मतलब जितना हम अपने आप को अधम मानेंगे उतना भगवान हमें ऊपर उठाएंगे, और जितना हम ऊपर उठना चाहेंगे उतना सर के बल भगवान गिराएंगे। तो ये दोनों रिलेटेड है, ग्रेविटेशन लेविटेशन। तो जब ठीक है हमको भगवान ने उबारा उठाया, उसके पश्चात देयर इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन, फिर हम भगवान के लेवल पे आ सकते। भगवान के लेवल पे आने के लिए भगवान हमें लेवल पे लाएंगे तब हम आ सकते। वी कैन नॉट फोर्स आवरसेल्व्स। फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन के पश्चात लॉ ऑफ यूनिफिकेशन, फिर हमारी इच्छा भगवान की इच्छा, उसमें एकात्मता, उसको बोलते हैं सही एकात्मता, यूनिफिकेशन, oneness, that is real oneness, when we have the same interest as that of God. Or then finally, law of subjugation. कि ये law of subjugation क्या है, कि एक भक्त इन सब के वजह से वो इतना भगवान को अपने कंट्रोल में कर लेता है भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा, कि भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, जैसे कि यशोदा माई, श्रीमती राधा रानी इत्यादि, वृंदावन के कुछ ऐसे बाबा जी हुए हैं जिन्होंने बहुत सुंदर अपने हृदय की उत्प्रेक्षा प्रार्थना के रूप में भगवान के समक्ष अर्पित किए हो। जैसे एक भगवान श्री राधा मदन मोहन के भक्त हुए बाबा जी, तो उन्होंने भगवान मदन मोहन जी से प्रार्थना की कि भगवान आप जब माखन चोरी करते हो तो माखन चोरी करने के पश्चात या तो गोपियां आपके पीछे लगती हैं पकड़ने के लिए, या यशोदा मई आपके पीछे लगती है पकड़ने के लिए। जब भी आप चोरी करते हो कोई ना कोई आपके पीछे पकड़ने के लिए, तो क्योंकि आप चोर हो, इसमें नाम ही है माखन चोर। तो जब आप एक चोर बन जाते हो तो चोर को छिपने के लिए एक अंधेरी जगह जरूरत पड़ती। दिन दहाड़े चोर जो हैं कम चोरी करते हैं, रात्रि में क्यों चोरी करते हैं, क्योंकि यदि कोई देख भी ले तो अंधेरे में कहीं छुप जाए। तो देखिए इन्होंने कितनी सुंदर प्रार्थना भगवान मदन मोहन जी से अर्पित की है कि भगवान जब भी आपको छिपने के लिए, माता यशोदा से या अन्य गोपियों से छिपने के लिए जब भी आपको कोई अंधेरी जगह चाहिए, तो एक अंधेरी जगह, इतनी अंधेरी है वो जगह कि कोई आपको खोज नहीं देख पाएगा वहां पर, और वो है मेरा हृदय। वो कहते हैं मेरा हृदय इतना अंधकार है उसके अंदर भगवान कि आपकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। तो ये बहुत विशेष प्रकार की प्रार्थना है जिसके अंदर This is called transcendental trickery. एक और वृंदावन के बाबा जी हुए, उन्होंने बांके बिहारी से प्रार्थना की। तो बांके बिहारी से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे बांके बिहारी, देखिए आपकी जो मुद्रा है, आप जिस पोस्चर में खड़े हो, भगवान श्री कृष्ण जहां कहीं पर भी, उनकी प्रसिद्ध मुद्रा कौन सी है, त्रिभंग। हम देखते हैं राधा मदन गोपाल जी बांसुरी बजाए हुए त्रिभंग में खड़े हुए। तो ये बोलते हैं बांके बिहारी से कि आप त्रिभंग में खड़े रहते हो हर समय, त्रिभंग अर्थात टेढ़े. द लॉर्ड हु इज बेंट इन थ्री प्लेसेस. तो तीन जगह पर जो वो क्रुकेड हैं, इंग्लिश में वो वर्ड है यूज किया गया, वो भगवान. तो ये कहते हैं कि देखिए, अब आप जब किसी के हृदय में फिट होने जाओ, तो फिट होने के लिए उसका हृदय भी तो टेढ़ा होना चाहिए, है ना. देयर कैनॉट बी अ स्क्वेयर पेग इन अ राउंड होल, एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है. तो आप का जो आप वो तो चेंज नहीं करोगे, आप सीधे तो कभी खड़े नहीं होने वाले, है ना. हाँ, बाकी आप देखो रामचंद्र जी, नारायण सीधे खड़े रहते हैं, परंतु भगवान कृष्ण सीधे नहीं रहते, हर समय ऐसे ऐसे खड़े रहते. एक और बहुत विशेष कारण है कि दो भक्तों में चर्चा हो रही थी, एक राम के भक्त एक कृष्ण के भक्त, तो दोनों में चर्चा हो रही थी कि दोनों में से कृपालु कौन है, रामचंद्र जी ज्यादा कृपालु हैं कि कृष्ण ज्यादा कृपालु. तो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, तो फिर रामचंद्र जी के भक्त ने कहा कि अरे रामायण पढ़ी है, क्या क्या कृपा रामचंद्र जी ने किन किन को कृपा दी, शबरी को, ये वो सब. तो फाइनली बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन चला. फाइनली जो कृष्ण के पार्टी का ये डिवोटी, तो इन्होंने कहा कि देखो, सबसे पहले देखो आपके रामचंद्र जी खड़े कैसे होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, और हमारे कृष्ण देखो, बांके बिहारी को देखो, नाम ही क्या है, बांका, जो बांका है. तो एक उनका जो तलवा है खुला हुआ, वो बाहर दिखाए हुए. क्यों क्यों दिखाए हुए है कि जब भी कोई बांके बिहारी भगवान कृष्ण का दर्शन करने आता है, तो हवा का जो झोंका वो उनके खुले तलवे से लग कर आता है, तो उनके चरण धूलि को लेकर उसके माथे पे छोड़ता है. तो कृपालु कौन हुए आपके रामचंद्र जी, तो रिलीज ही नहीं करते, सीधे खड़े हैं अटेंशन में. हाँ, तो कहां से वो चरण धूलि मिलेगी. हमारे बांके बिहारी देखो कितने के. तो ये भक्त भी उसी प्रकार की प्रार्थना ही कहते हैं कि देखो भगवान, यदि मेरे जिंदगी को देखो तो मैं बहुत टेढ़ा हूं. वो कह रहे हैं मैं, मेरा दिल भी टेढ़ा है, मैं खुद भी टेढ़ा हूं, इसलिए मेरे लिए आप सबसे फिट भगवान, क्योंकि आपका सब कुछ टेढ़ा. तो ऐसे ही एक बार एक गुरुजी से प्रश्न पूछा गया, वृंदावन के भगवान के भक्त उनसे प्रश्न पूछा गया कि भाई ये जो अयोध्या से आए हुए थे, तो वो ये प्रश्न पूछ रहे थे कि ये जो आपके कृष्ण हैं, इन्होंने अपने जीवन में कोई भी काम सीधा नहीं किया, सब कुछ टेढ़ा. इनकी महाभारत में नीतियां देखो टेढ़ी, इनकी लीलाएं देखो टेढ़ी, नाम भी देखो कृष्ण, राम का देखो सिंपल रहता है, स्ट्रेट, सब स्ट्रेट है. ये कृष्ण का नाम भी देखो, यहां से ये घूम रहा है अंदर टेढ़ा जा रहा है, उधर से शिव आधा, नाम टेढ़ा, काम टेढ़ा, मुद्रा टेढ़ी, सब कुछ टेढ़ा है. तो इनको जब ये प्रश्न पूछा, तो अब इनके सामने चुनौती, भाई इज्जत का सवाल है. तो इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ये भगवान के टेढ़ेपन को समझाया. उन्होंने बताया, आओ मेरे साथ आओ. तो वो लेकर गए इनको एक कुएं के पास, कुएं के पास ले गए, और कुएं में अंदर बाल्टी गिरी हुई थी. तो इन्होंने एक लोहे की सलाख दी उनको और उनसे कहा कि ये बाल्टी निकालो, कुएं से बाल्टी निकालो। तो अभी वो स्ट्रेट लोहे की सलाख, तो वो बाल्टी कैसे निकाले अभी? बोले अरे ऐसे थोड़ी बाल्टी निकलती है। बोले कैसे निकलती है? उन्होंने वो लोहे की सलाख ली और उसको मोड़ा, मोड़ा उसको और मोड़ के फिर वो बाल्टी निकाल रहे। तो जैसे वो बाल्टी निकाल रहे थे तो ये बाबा जी ने इनसे कहा, वृंदावन के बाबा जी कहते हैं कि अरे एक पानी की बाल्टी निकालने के लिए तुमको वो लोहे की सलाख टेढ़ी करनी पड़ती है, तो भगवान को तुम्हें भवसागर से निकालने के लिए टेढ़ा नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि हम सीधे नहीं है, हम सीधे नहीं है और सीधी बातें समझ में भी नहीं आती है हमें। इसलिए तो एक श्लोक को 28 भाग हो गए हैं। तो देखिए ये जो अलग अलग लॉज है ये हमारे प्रेयर्स में होने चाहिए। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन शुड लीड टू लेविटेशन, रेसिप्रोकेशन, यूनिफिकेशन एंड फाइनली सब्जुगेशन। तो प्रार्थना ये भगवान के साथ एक संवाद है, कॉन्वर्सेशन, भगवान के साथ संवाद। इसलिए अब हम आते हैं कलयुग में जो हमें युग धर्म दिया है ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये जो युग धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, इसका जप, क्या यही केवल युग धर्म है? नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सर्वप्रथम दिया है श्रवण और कीर्तन। तो श्रवण और कीर्तन ये दोनों का जो समन्वय जब होता है तब जाकर हमारा युग धर्म संपूर्ण होता है। तो यदि कोई ये समझे कि भाई मुझे पता है कलि संतरण उपनिषद में ये हरे कृष्ण महामंत्र निर्धारित है कलयुग जीवों के लिए, तो मैं तो अपने घर पर बैठकर ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता रहूंगा, नहीं। युग धर्म संपूर्ण कब होता है? जब हम श्रवण करते हैं और उस श्रवण के पश्चात जब कीर्तन होता है तब उस कीर्तन के अंदर भावनाएं आती हैं। बिना श्रवण के वो कीर्तन, जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं ना, अ हस्क विदाउट राइस, जो तूस होता है तूस, उसके अंदर से अगर आप धान्य निकाल दो, कितना भी उसको बाहर से दिखेगा कि हाँ इस अच्छा है, अभी इसके अंदर धान्य होगा कुछ भी, लेकिन उसको कितना भी मारो पीटो कुछ नहीं उसके अंदर। तो ये हमने इसकी तुलना प्रार्थना से क्यों की है, ये दोनों श्रवण और कीर्तन। तो यदि श्रवण और कीर्तन को हम लें, पिछले स्लाइड में क्या था, प्रेयर मीन्स कॉन्वर्सेशन विद गॉड, भगवान के साथ वार्तालाप है, ये संवाद है। सो व्हेन यू हियर, श्रवण जब हम करते हैं, कृष्णा इज टॉकिंग टू अस, सिंपल मैथमेटिक्स है, कृष्णा इज टॉकिंग टू अस। हम भगवत गीता से श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत से श्रवण करते हैं, चैतन्य चरितामृत ग्रंथों से श्रवण करते हैं। तो श्रवण करते समय क्या एक्टिविटी हो रही है, जैसे वार्तालाप में क्या होता है, एक बोलता है दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है ये सुनता है, इसको कहते हैं संवाद, इसको कहते हैं वार्तालाप। सो हियरिंग, श्रवण, कीर्तन, सिंपल तरीके से समझा कैसे जाए, कन्वर्सेशन जो प्रेयर हमने उसको कहा है। और कीर्तन क्या है, इसका ऑपोजिट, कीर्तन इज जब हमने भगवान से सुना, अब हम सुनाते हैं भगवान को। तो भगवान से, अब देखिए भगवान ने क्या कुछ नहीं सुनाया है, 700 श्लोक भगवद गीता के, 18,000 श्रीमद् भागवत में, 1,00,000 महाभारत में, 24,000 रामायण में, और इसके अलावा इतने उपनिषद, 108 उपनिषद, पुराण, उपपुराण, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब मिला लो, ये सब भगवान बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। अरे जब भगवान इतना बोल रहे हैं तो कम से कम हम थोड़ा तो बोले उनके सामने, क्या बोलेंगे? तब तो जाके संवाद बैलेंस होगा थोड़ा, नहीं तो केवल वन वे ट्रैफिक चल रहा है। जिह्वा है, चल रही है, भगवान का नाम नहीं निकल रहा है। बाबा रे बाबा, एतो बड़ो नाम नेते पारवे ना है। याद है वो कहानी प्रभुपाद ने, अंतिम समय हरे कृष्ण महामंत्र निकलने के बजाय क्या निकाला? यही, इतना बड़ा नाम कैसे निकलेगा? अरे तो क्या निकल रहा है? प्राण निकल रहे हैं, उससे पहले हमारे धन प्राण, उनका नाम लें हम प्राण निकलने से पहले। तो जब हमारा श्रवण और कीर्तन ये पक्का होता है, केवल ये पक्का हम कर लिए, हमारा वंदनम पक्का हो गया। इतना जो सब कुछ हमने पिछले 2-3 बुधवारों से डिस्कस कर रहे हैं वंदनम के ऊपर, ये सब का निचोड़ क्या है? ये स्लाइड। यदि आपको कुछ भी याद नहीं इतने बुधवारों से जो हमने चर्चा किया, हाँ, परंतु ये स्लाइड यदि याद रह जाए आपको कि आपको जीवन में अब करना क्या है वंदनम के दृष्टिकोण से, या वंदनम के संदर्भ में करना क्या है, श्रवण और कीर्तन, कन्वर्सेशन। कोई यदि आपसे पूछे कि भाई भगवान से कन्वर्सेशन करना चाहोगे, अवश्य ही करना चाहोगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है? श्रवण और कीर्तन। तो अब हम आते हैं सांत्वन कि वंदनम, जब वसुदेव देवकी और देवी देवताओं ने जब अपनी वंदना अर्पित की, भगवान प्रकट हुए, तो अब भगवान प्रकट होते ही भगवान ने सबसे पहले वसुदेव जी और देवकी इनको सांत्वना दे रहे। तो ये जो भगवान द्वारा सांत्वना देना, अब हम इस पर फोकस करेंगे कि हमारे जीवन में, जैसे कि भगवान, यहां पर आप देखो कि भगवान पैदा हुए, पैदा होते ही भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। तो चतुर्भुज रूप भगवान ने यशोदा और नंद महाराज को नहीं दिखाया, वहां पर भी भगवान उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए, परंतु वहां पर चतुर्भुज रूप नहीं दिखाया, परंतु देवकी और वसुदेव को चतुर्भुज रूप क्यों दिखाया? बहुत सुंदर टीका है हमारे आचार्यों की इसके ऊपर। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि देवकी और वसुदेव घबराए हुए थे, उनके अंदर भगवान अपने पुत्र को लेकर, हालांकि भगवान है वो, परंतु वो तो अपना पुत्र ही मान रहे हैं उनको, और इससे पहले कंस ने जो अत्याचार किए हैं, इतने शिशुओं को उसने सामने देवकी के मारा है, तो ये सब कुछ अनुभव करने के पश्चात देवकी और वसुदेव इतने घबराए हुए भगवान, जैसे हम पिछली बार बता रहे थे कि जो मिक्स्ड फीलिंग्स इन दोनों के अंदर थी, उल्लास की भगवान का जन्म होने वाला है, उसके साथ साथ डर, ये भय कि कंस को पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेगा, ये तो छोटा से शिशु के रूप में ही तो आने वाले हैं, इसलिए इनका भय दूर करने के लिए, इनको सांत्वना देने के लिए भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप लिया, विशेष रूप से देवकी, देवकी को सांत्वना देने के लिए, कि भगवान देवकी को कह रहे हैं कि घबराओ मत माते, मैं स्वयं अपनी सुरक्षा करने के सक्षम हूं, ये देखो चतुर्भुज सारे आयुधों के साथ भगवान शंख चक्र गदा पद्म। तो जब वसुदेव जी और देवकी ने भगवान के इस चतुर्भुज रूप को देख लिया, और कहां से उत्पन्न हुआ है, इसी बालक से उत्पन्न हुआ है देवकी नंदन, देवकी नंदन से ये जो इनका चतुर्भुज रूप। तो भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं कि घबराओ मत, अभी तो मैं पैदा हुआ हूं, अभी तो मेरी लीलाएं शुरू होंगी या शुरू हो चुकी हैं, अब मेरे एक एक कारनामे देखना। तो इसलिए अब यशोदा और नंद महाराज को यदि भगवान ये चतुर्भुज दिखाते तो वो अलग मूड में थे। तो वो अगर भगवान का चतुर्भुज रूप देखते तो वो कहते कि ये क्या बेढंगा रूप लिया है, ये भैया नॉर्मल बनो तुम, हमारे तरफ क्या है, दो अलग अलग हाथ बाहर आए हैं तुम्हारे। परंतु इनका मूड अलग था, देवकी वसुदेव का, इनके भय को दूर करने के लिए, इनको सांत्वना देने के लिए भगवान ने। तो अब देखिए, नंद महाराज और यशोदा, उनको भगवान सांत्वना देते हैं उनके भाव के अनुसार, देवकी वसुदेव उनको सांत्वना देते हैं उनके भाव के अनुसार। तो हमें क्या समझना चाहिए कि भगवान हरेक उनके भक्त के साथ विभिन्न प्रकार से बहुत ही व्यक्तिगत रूप से सांत्वना देते हैं। तो हमारे जीवन में भगवान हमें सांत्वना कैसे देंगे, एश्योरेंस कैसे देंगे, और किसी और के जीवन में भगवान उनको एश्योरेंस या उनको सांत्वना कैसे देंगे, बहुत भिन्न हो सकता है। तो इसकी चर्चा हम जब प्रारंभ कर रहे हैं अब, तो सबसे पहले ये जाने कि इस भौतिक संसार में भगवान को तीन दृष्टिकोण से देखा जाता है। सबसे पहला दृष्टिकोण क्या है बद्ध जीव का, भगवान को किस प्रकार से देखता है वो, ये दो दृष्टिकोण, ये दो एक्सट्रीम दृष्टिकोण है। ये आपको थोड़ा पढ़ के थोड़ा अलग अजीब लगेगा, मैं इसको समझाऊंगा। कॉस्मिक वेटर, वेटर तो हम जानते हैं, परंतु भगवान को लोग बद्ध जीव जो हैं पूरे विश्व का वेटर मानते हैं, कई लोग जो इस कैटेगरी के होते हैं। जैसे कोई रेस्टोरेंट जाता है तो किस मूड में जा रहा है वो रेस्टोरेंट, पहले उसका मूड अगर हम समझने की कोशिश करें, किस मूड में रेस्टोरेंट जा रहा है वो, खाना नहीं बनाना है, सबसे पहला मूड क्या है, खाना नहीं बनाना है, ये फर्स्ट मूड, अर्थात मेहनत नहीं करनी है, है ना। फिर वहां जाने के पश्चात वो जो भी चाहे, वो वेटर ज्यादा पढ़ा लिखा हो कस्टमर से, परंतु वेटर है ना, तो कस्टमर ज्यादा कोई दिग्गज भी नहीं होगा, परंतु कस्टमर बन के गया है तो एक अहंकार लेके बैठा रहता है, अहंकार को लेके बैठा रहता है कि तुम मेरी सेवा के लिए यहां पर हो, क्या मूड है, मेरी सेवा के लिए हो, इसलिए कहा ऑर्डर, ऑर्डर लो मेरा ऑर्डर, क्या बोलते हैं, ऑर्डर लो। और अगर वेटर लेट आ रहा है तो उधर जो गल्ले पे बैठा, ऑर्डर कौन ले रहा है, ऑर्डर कौन ले रहा है, ऐसे चिल्लाते हैं, ऑर्डर कौन ले रहा है। तो वेटर भाग के आता है, हाँ साहब ऑर्डर क्या, आपका ऑर्डर क्या, हाँ ये लिखो सब कुछ, लंबा चौड़ा लिस्ट अपना देता है, और देते समय उसको ऐसे एकदम घमंड उसके अंदर रहता है कि मैं इसको ऑर्डर दे रहा हूं। हो सकता है सामने जो बीवी बैठी उसने बोला होगा ये सब, बोलो उसको। लेकिन जो भी अब सामने तो दे रहा है ना कि मैं दे रहा हूं ऑर्डर, तो मूड क्या है कि मैं ऑर्डर दे रहा हूं। वेटर क्या बन गया? ऑर्डर सप्लायर। गॉड बिकम्स ऑर्डर सप्लायर। तो जो ये कैटेगरी के होते हैं वो लोग क्या है, मेहनत नहीं करनी है, मैं भाई तुम्हारे लिए उपवास रख रहा हूं ना, हाँ जो भी श्रावण मास कर रहा हूं, 16 सोमवार, 32 बुधवार, 64 शनिवार, हाँ 108 रविवार, जो भी कर रहा हूं मैं, तो वो क्या है, पैसे दे रहा हूं ना। जैसे कस्टमर का मूड क्या है, भाई पैसे दे रहा हूं तो जो मैंने ऑर्डर किया है मुझे उस हिसाब से मिलना चाहिए। जैसे ये किस्सा हुआ जर्मनी में, कि वहां पर जर्मनी के एक होटल में कुछ ऐसे डेलीगेट्स गए खाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत कुछ मंगाया खाया, उसमें से कुछ छोड़ दिया ऐसे प्लेट में छोड़ दिया, और वो होते कईयों की आदत होती है, उनको उसमें लगता है कि बहुत उनका पोजीशन हाई है, उसमें से कुछ छोड़ दिया जाए तो वो बहुत कल्चर्ड हैं, स्टैंडर्ड के लोग हैं कि पूरा नहीं खाया छोड़ा उन्होंने, मतलब हौरट नहीं है। हाँ तुमने बनाया होगा अच्छा, हमारा स्टैंडर्ड है छोड़ते हैं, तो उन्होंने छोड़ा प्लेट और अपना वो जा रहे थे उठ के, तो वेटर ने और वो मैनेजर ने दोनों ने उनको बोला कि ये आप पूरा कीजिए, ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं, पूरा कीजिए इसको। तो बोले क्यों भाई, हमने तुमको पैसे दिए ना, तुमको पूरे पैसे मिले कि नहीं, ये हम क्यों पूरा करें। तो जो जवाब उनको दिया गया, जो उन्होंने एक्चुअली पुलिस को बुलाया वहां के जो, और पुलिस को बुलवा के पुलिस ने फिर कहा उनको, बहुत सुंदर स्टेटमेंट कहा, द मनी माइट बी योर्स बट द रिसोर्सेज बिलोंग टू द गवर्नमेंट एंड पीपल, यू कांट वेस्ट दैट, या तो अपने साथ ले जाओ या खाओ। बहुत सुंदर स्टेटमेंट उन्होंने कहा, मनी बिलोंग्स टू यू, इट माइट बिलोंग टू यू, बट रिसोर्सेज बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट एंड पीपल। तो पॉइंट क्या है कि जब कोई भगवान के समक्ष इस मूड में जाता है मेनू कार्ड लेके, हाँ कि भगवान को वेटर बना रखा है और भाई मेरे जीवन का ये मेनू कार्ड है, ये मेरा ऑर्डर है, मेरे पास पैसे हैं बिल भरने के, मेरा ऑर्डर सप्लाई करो, ये कैटेगरी है। व्हेन गॉड इज मेड इनटू अ कॉस्मिक वेटर। और दूसरा है कि जब वेटर ने पूरी नहीं की मेरा ऑर्डर, भगवान अगर मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं तो ही बिकम्स द क्रूअल डिक्टेटर। अगर भगवान कहें कि मैं जो दूंगा वही खाना पड़ेगा, तो ये तेरा मेनू कार्ड साइड में रख, मैंने जो बनाया है दलिया खा, दलिया ही खा, तू तेरे को पनीर मक्खन वाला खाना है ये दलिया खा। तो अगर दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि उनके अनुसार भगवान जो हैं वो क्रूर व्यक्ति हैं, हर समय उनके हाथ में वो दंड होता है, पनिशमेंट रॉड होता है दंड देने के लिए, तो ये एक। परंतु हमारे सनातन धर्म में, वैदिक संस्कृति में भगवान को एक लविंग फादर बताया गया। अच्छा, लविंग फादर तुरंत हमें क्या एक छवि सामने आती है, एक ऐसा पिता जो बस अपने बच्चे को ना खिला रहा है, पुचकार रहा है, बच्चे के लिए सब कुछ ला लू के दे रहा है, इज दैट अ लविंग फादर? जैसे हमने एक बार चर्चा की थी ना कि बच्चा जो है वो खाता नहीं है तो उसके माता पिता उसको थप्पड़ मार के खिलाते हैं, नहीं खा रहा नहीं खा रहा, थप्पड़ मार के क्या खिला रहे हैं? दलिया, दलिया खिला रहे हैं, दलिया समझते हैं आप, दलिया खिला रहे हैं उसको थप्पड़ मार के। और वो जाता है किसी होटल में, होटल में मुस्कुरा कर वेटर उसको क्या खिलाता है, क्या खाना है भाई, पिज्जा खाना है, पास्ता खाना है, बर्गर खाना है, ये हाँ ये सब, वो मुस्कुरा के सब कुछ उसको जो उसका पसंदीदा वो सब खिला रहा है। और घर में थप्पड़ मार के वो माँ बाप उसको दलिया खिला रहा है। प्रेम कहाँ पर, ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेम कहाँ दिख रहा है? वेटर मुस्कुरा कर उसको जो पसंद के आइटम्स है वो खिलाता है, और यहाँ पर माँ बाप थप्पड़ मार के जो उसको बहुत बेस्वाद लगता है वो जबरदस्ती उसको खिला रहा है। तो हमने इसको टर्म दिया था, व्हाट इज मैच्योरिटी? टू सी द स्लैप बिहाइंड द स्माइल ऑफ द वेटर एंड टू सी द स्माइल बिहाइंड द स्लैप ऑफ द फादर, दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। वही वेटर जो मुस्कुरा के जो आप मांग रहे हो आपको लाके दे रहा है, जब उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, घर चले गया है, रात के 12 बजे जाओ उसके घर जाओ और बोलो तुम मुस्कुरा नहीं रहे, मैं वही अभी आया था ना शाम को, कौन भाई तुम, अरे तुम इतना मुस्कुरा के क्या खाओगे सब कुछ, हाँ भूल गए, दफा हो यहां से, क्या बोलेगा वो, तेरे जैसे रोज आते रहते हैं बतेरे। लेकिन वही बच्चा चाहे रात के 2 बज जाए, यदि जो उसके लिए जरूरत है वो उसकी माँ और उसके जो पिता हैं वो रात के 2 बजे भी उठ के उसको देंगे। दैट इज हाउ वैदिक पाथ कल्चर टीचेस द डेफिनेशन ऑफ गॉड, लविंग फादर। इसमें हम कैसे समझेंगे, कृष्णा नोज बेटर देन मी व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। एक बहुत सुंदर इंसिडेंट है हमारे इस्कॉन के एक डिवोटी, तो ये पहले इस्कॉन से जुड़ने से पहले यूरोप, यूरोप या अमेरिका यहां के ये, तो इनका नाम था क्रिस लुइस। तो ये क्रिस लुइस ये गलत आदतों में थे, ड्रग्स वगैरह लेते थे, ड्रग्स का ट्रैफिकिंग भी करते थे थोड़ा सा। तो एक बार एक हमारे इस्कॉन के ब्रह्मचारी ने इनको एक पुस्तक दी, तो उनको लगा कि मैं अध्यात्म, ये सब विरोधाभास है मेरे जीवन को देखते हुए। तो उन्होंने वो पुस्तक अपने घर में ऐसे ही फेंक दी, किसी ने दी है चलो ठीक है, मैं जिंदगी में कभी पढ़ने तो वाला नहीं हूं इसको, उन्होंने ऐसे फेंक दी वो पुस्तक। फिर क्या हुआ कि कुछ महीनों बाद वो ड्रग ट्रैफिकिंग में वो पकड़े गए और जेल हुई उन्हें, और जेल में अब अकेले जेल में रहते 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 रहते, उनका परिवार था बीवी बच्चे और युवावस्था में अब जेल में, और ड्रग्स की जो जेल होती है वो इंडेफिनेट, जब तक वो चाहे वो रखना चाहे रख सकते हैं आप। तब वो जेल में धीरे धीरे उनको लगा कि मुझे अपने मन को स्टेबल करने के लिए कुछ अध्यात्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि न तो वहां पे ड्रग्स मिल रहे हैं, एक साधारण जीवन भी नहीं जिया जा रहा है, और इतनी कठिनाई, अकेलापन, सुख सुविधा कुछ नहीं, तो वहां पर एक ही चारा अब अध्यात्म। तो उन्होंने अलग अलग प्रकार से जो उनके वहां के जो धर्म, उनके धर्म गुरुओं, उनके पुस्तकें, बाइबल, ये वो अलग अलग प्रकार से सब कुछ पढ़ने का प्रयास किया, कहीं पे सांत्वना प्राप्त नहीं हुई। फिर फाइनली याद आया कि मुझे वो एक किताब दी थी एक ये हरे कृष्णा ने, तो किताब मंगवाई घर से अपनी बीवी को कहकर। और फिर जब वो किताब पढ़ने लगे तो फाइनली, और भगवत गीता थी वो, तो भगवत गीता जब पढ़ने लगे तो उनको सही मायने में समझ में आया, क्योंकि अब उनका वो ड्रग्स लेना बंद हो गया था इतने महीनों से। गलत आदतें, फिजिकली उनकी जो इंद्रियां थी वो गलत आदतों में नहीं लगी थी। तो अपने आप इतना समय इंद्रियां नहीं लगी हुई हैं गलत आदतों में, खालीपन, तो उसके वजह से भगवत गीता का इफेक्ट होने लगा। और वो इतना ज्यादा परिवर्तित हो गए और उनका व्यवहार इतना अच्छा हो गया पूरी भगवत गीता पढ़ने के पश्चात, कि 2 साल पहले उनके अच्छे व्यवहार के वजह से उनको रिहा किया। 2 साल पहले, उनके टर्म के 2 साल पहले उनको रिहा किया। और फिर वो अपने घर गए, अपने बीवी बच्चों उनको प्रचार किया, ऑल्टर वगैरह सब घर पे, पूरा हरे कृष्णा टाइप डिवोटी फैमिली गृहस्थ बन गए, इनिशिएटेड। और फिर वो ज्वाइन किए एक इस्कॉन में एक प्रिजन मिनिस्ट्री है, जो कि जेलों में जाके प्रचार करते हैं लोग, तो उसको ज्वाइन किया इन्होंने, इस्कॉन प्रिजन मिनिस्ट्री, कि मैं जेल में, मुझे ये भगवत गीता से सांत्वना मिली है, तो जेल के जितने कैदी हैं मैं जानता हूं उनका मनोभाव क्या होता है, आई कैन रिलेट टू प्रिजनर्स। तो अभी वो इस्कॉन प्रिजन मिनिस्ट्री में हमारे इनिशिएटेड डिवोटी वो प्रचार करते हैं अन्य कैदियों को। तो अगर ये स्टोरी को हम पूरे गौर से समझने की कोशिश करें, तो जो उनके अनुसार उनका जीवन चल रहा था, उनके अनुसार एक इंद्रिय भोगी जीवन चल रहा था, व्यसनी जीवन जो चल रहा था उनका, उस व्यसनी जीवन के अंदर भगवान ने इंटरसेप्ट किया। और उनको लग रहा था कि अरे भगवान तो क्रूअल डिक्टेटर हैं और मुझे यहां से निकाल के मुझे जेल कर दिया। परंतु वो जेल जब उनको हुई तो वहां पर उनको एहसास हुआ, देखो भगवान का जेल से बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, खुद भी जेल में पैदा हो भगवान। परंतु फिर ये प्रश्न लोगों को उठता है कि यदि आप कहते हो कि भगवान हमारे लविंग फादर हैं, और आप ये सब उदाहरण देते हैं जैसे क्रिस लुइस ये लोग सब ऐसे भक्त बने हैं, तो मैं अपने जीवन में जब देखता हूं या संसार को आस पड़ोस में देखता हूं तो इतना दुख इस संसार के अंदर, ये संसार को भगवान ने इस प्रकार से डिजाइन क्यों किया है। बहुत बार डिवोटीज हम भी इतने वर्ष भक्ति करने के पश्चात, साधना करने के पश्चात, जब हम देखते हैं कि हमारे खुद के जीवन में कुछ ऐसे दुख आते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, या कोई किसी की मृत्यु हो जाए अकस्मात, या फिर बिजनेस पूरा लुट जाए, या फिर बने नहीं परिवार वालों में, सब कुछ ये सब दिखता है, तो ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि व्हाई डिड गॉड डिजाइन दिस वर्ल्ड एज अ सफरिंग प्लेस, इफ ही इज अ लविंग फादर, व्हाई हैज ही डिजाइंड दिस प्लेस सो मिजरेबल। और बोल के दुखालय बोले भी हैं, अरे कम से कम बोले तो नहीं होते आप, हमको लगता कि और किसी ने बनाया होगा, आप ही बोलते हो कि आपने संसार बनाया, और फिर आप ही बोलते हो कि दुखालय बनाया। ये प्रश्न जायज है ना, तो ये आपके सामने इसका उत्तर।
इफ गॉड हैज डिजाइंड आवर वर्ल्ड then why is there so much suffering? Consider an object, say for example a cell phone. When we evaluate the design of any object, we need to keep its purpose foremost in mind. Otherwise, even the best design can be easily faulted. For example, if we use a cell phone's message typing keypad for typing a book, we will naturally feel justified in criticizing the cell phone's design and designer. But a well-informed person will remind us that the cell phone's design should be evaluated keeping in mind its primary purpose, that is, to serve as a portable audio communication device. Similarly, spiritually well-informed individuals remind us that this world's design should be evaluated keeping in mind its primary purpose. Most of us assume that this world's purpose is to facilitate our comfortable and enjoyable living. And this often unspoken assumption makes us feel justified in criticizing its design and designer. But would it be that this assumption is erroneous? That the world has some other purpose? How can we know that purpose? From God, who is the designer of this world. Therefore, for knowing the purpose of this world, logically, we should turn to the designer's words, the God-given scriptures, like the Bhagavad Gita. These scriptures inform us that this world is meant primarily to serve as a transitional, curative place, something like a hospital. Everything within a hospital, from the high-tech MRI scanning devices to the spiceless meals, is well designed. Yet, sufferings are also innately, unavoidably present in the hospital. The sufferings in a hospital are not because of the doctor, but in spite of the doctor. The sufferings are caused by the patient's sickness, which in turn originates in their past imprudent lifestyle choices. Similarly, the Vedic scriptures explain that the sufferings in this world are not because of God, but in spite of God. These sufferings are caused by our own spiritual sickness, which in turn originates in our own imprudent lifestyle choice of wanting to enjoy separate from God. When the patients start cooperating with the doctor by accepting the prescribed treatment, then they experience the benefit of improved health and then realize that the hospital is truly well designed. Similarly, if we start cooperating with God by accepting His prescribed treatment of redirecting our love from matter to spirit by chanting the holy names, then we will experience for ourselves the benefit of improved spiritual health accompanied by mental peace and inner fulfillment. Then we will realize that the world is truly well designed.
एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा मैं, जैसे इन्होंने उदाहरण इस्तेमाल किया अस्पताल का, तो डॉक्टर के वजह से परेशान नहीं है मरीज, डॉक्टर होने के बावजूद अस्पताल में दर्द पीड़ा ये सब देखा जाता है, क्यों? वो तो मरीज के वजह से। तो उदाहरण ये है, ये अभी भी मुझे उदाहरण याद आया वीडियो देखते समय, फ्रेश है। जैसे मान लो कि वेइंग मशीन होता ना, वजन की मशीन, वजन चेक करने की मशीन, तो कोई उसके ऊपर खड़ा होता है अपना वजन देखने के, और मशीन ने वजन दिखाया 100 किलो। बोलता है क्या बकवास मशीन है, तो मशीन को गालियां देने लगता है, ये मशीन बकवास है, ये मशीन को कोई तरस नहीं आता है मुझके मेरे ऊपर, इतना वजन दिखाती है मशीन। तो क्या कहोगे आप, मशीन ने क्या दिखाया है, जो खाया है ना। तो मशीन तो वही दिखाएगी जो आपने पूरे इतने वर्षों से जो कुछ वजन बढ़ा रखा है, तो मशीन तो वही दिखाने वाली है। सो टू कर्स प्रोविडेंस और टू कर्स गॉड बिकॉज ऑफ योर प्रॉब्लम इज लाइक कर्सिंग द वेइंग मशीन बिकॉज इट इज शोइंग टू मच वेट। क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को, यदि उसे उस मशीन में वो आंकड़े कम दिखने वो चाह रहा है, तो उसको क्या करना है, उसका वेट कम करना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री विल एंड डेस्टिनी, सो योर हाइट इज योर डेस्टिनी एंड योर वेट इज योर फ्री विल। तो अब हम अगर भगवान तकलीफें जो हैं, हाँ ठीक है तकलीफें हैं, अस्पताल का एग्जाम्पल, अस्पताल में तकलीफें हैं, तो भगवान तकलीफों का इस्तेमाल कर कर हमें कुछ सिखाते हैं, ये सीखने लायक है। सो व्हाट गॉड टीचेस थ्रू प्रॉब्लम्स, गॉड यूजेस अवर प्रॉब्लम्स to direct us, to inspect us, to correct us, to protect us and to perfect us. और इन सब का एक एक example हम लेंगे शास्त्रों से। तो हमारे जीवन में जब भी तकलीफें, कठिनाई, परेशानियां, ये सब कुछ आए, तो समझ लेना चाहिए कि इनमें से, इन पांच चीजों में से भगवान कुछ ना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। कई बार तो पांचों स्थिति ऐसी होती है ना, कई जो ऐसे मरीज होते हैं कि सारे मशीन लगाने पड़ते हैं उनको। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स गॉड इज डूइंग ऑल द फाइव, समटाइम्स मे बी जस्ट वन और टू, इस हिसाब से। तो अब अगर हम एक एक उदाहरण इसमें लें, गॉड गिव्स प्रॉब्लम्स टू डायरेक्ट यू, तो इसमें ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल, कि ध्रुव महाराज के जीवन में जब वो तकलीफ की स्थिति आई, अपमानित ध्रुव महाराज हुए, उन्होंने वो इतना बड़ा अपमान ले लिया उसे, उनके पिताजी और उनकी सौतेली माँ उनके द्वारा दिया गया, तो ध्रुव महाराज के उस तकलीफ या उस विकट परिस्थिति को भगवान ने इस्तेमाल कर कर क्या किया, उनको कहां डायरेक्ट किया उनको। जैसे कि क्रिस लुइस का एग्जाम्पल, क्रिस लुइस की उस तकलीफ के वजह से उसने वो किताब मंगवाई और किताब भगवत गीता पढ़ी इत्यादि, ये सब कुछ। तो हम में से यहां पर बहुत से होंगे कि यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसी कठिनाई परेशानी जो आई हुई होगी, जिसके वजह से हम यहां पर आए ढूंढते हुए कि अरे भाई यहां पे कोई सहारा है, लुट गया, बेसहारा हूं, जो भी कोई परेशानी उसकी वजह से। तो जैसे ध्रुव महाराज के लाइफ में हम देखते हैं कि भगवान ने क्या किया, यूज्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ ध्रुव महाराज टू डायरेक्ट। तो यदि वो प्रॉब्लम हमारे जीवन में हमें कोई ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए यदि हम प्रामाणिक हैं तो भगवान हमें सही दिशा में अवश्य ही ले जाएंगे उस तकलीफ का इस्तेमाल। इसका अर्थ क्या है कि वो तकलीफ एक वाहन बनता है, वो परेशानी जो है वो एक वाहन बनती है हमें सही दिशा में ले जाने की। फिर दूसरा उदाहरण है अजामिल का, कि यहां पर देखिए अजामिल जो कि अपने आप को इतना शुद्ध ब्राह्मण मानता था, परंतु भगवान ने अजामिल के सामने जब वो प्रलोभन रखा तो उसकी असलियत बाहर आई, अजामिल की असलियत बाहर आई। इसलिए मैं उदाहरण देता हूं कि जैसे टी बैग होता है, टी बैग, अब टी बैग्स जो होते हैं वो टी बैग के अंदर आपको तो पता नहीं कि टी बैग के अंदर क्या है, दिखता है कुछ तो चाय पत्ती जैसे, कैसे समझ में आएगा कि वो चाय पत्ती है? हाउ विल यू कम टू नो दैट दैट टी बैग हैज टी इन इट? गरम पानी में डालने से ना, जब उसको गरम पानी में डालोगे तो गरम पानी में डालने से जो उसकी महक है, जो भी उसका अरोमा है, फ्लेवर है, कलर है, वो सब गरम पानी में डालने से वो चाय पत्ती बाहर निकालती। तो उसी प्रकार से हमारा चरित्र क्या है, हमारी नियत क्या है, ये सब भगवान को अगर चेक करना, इंस्पेक्ट करना है, तो भगवान कैसे इंस्पेक्ट करते हैं? हम लोग चाय पत्ती हैं, और तकलीफें क्या है? गर्म पानी, खोलता हुआ गर्म पानी के अंदर भगवान ये चाय पत्ती को डालते हैं, फिर समझ में आता है कि ये पत्ती है या केवल, या चाय पत्ती है या केवल पत्ती है। तो अजामिल, अच्छा अजामिल के जीवन में आगे चलकर जब अजामिल ने यमदूतों को देखा, हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दी उसकी स्टोरी अभी, तो यमदूतों को देखता है वो मृतशैया पर लेटा हुआ, तब जाकर उसे समझ में आता है कि उसने कितनी भारी भूल की, क्या छोड़ा, किसके लिए। तो फिर अजामिल अपने सही राह पर आता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि भगवान ने अजामिल को परखा, और परखने के पश्चात अजामिल को जो वो बहुत ही भयावह सिचुएशन से गुजरना पड़ा, अजामिल को एक तरफ यमदूत ले जाने वाले हैं अभी यमलोक, और दूसरी तरफ विष्णुदूत, दोनों में वाद विवाद चल रहा है कि ये कहां जाएगा, सोचिए उसका अभी डिसीजन होने वाला है। तो उस विकट परिस्थिति में वो शुद्ध हुआ। फिर अवंती ब्राह्मण की जो कथा है, जिसके अंदर ये व्यक्ति बहुत ये कृपण व्यक्ति था, कंजूस व्यक्ति था, कि अपने परिवार वालों को ठीक से उसका भरण पोषण नहीं करता था, इतना ये कंजूस व्यक्ति था। और फिर जब इसका सब कुछ लूट गया और ये रास्ते का भिखारी बन गया, ऐसी परिस्थिति में जहां पर एक माननीय व्यक्ति था एक जमाने में ये अवंती ब्राह्मण, और अब इसका सब कुछ लूट गया, रास्ते का भिखारी बन गया, तो इसके ऊपर थूकते थे लोग, इसके जो भिक्षुक पात्र था उसके अंदर मलमूत्र त्याग देते थे। परंतु वो जब इस दौर से गुजरा तो अवंती ब्राह्मण ने अपने आप को सुधारा, और अवंती ब्राह्मण कहता है कि न तो कर्म, न ग्रह, न काल, न देवता, ये सब कोई मेरे दुख के कारण नहीं है, न मेरे परिवार वाले, कोई भी नहीं। मनः परम कारणम आमनन्ति, ये मेरा जो मन है जो इतना आसक्त रहता है इन चीजों में, इसके वजह से। सो लॉर्ड करेक्टेड अवंती ब्राह्मण थ्रू द प्रॉब्लम्स, लॉर्ड प्रोटेक्टेड प्रहलाद थ्रू द प्रॉब्लम्स, और प्रहलाद महाराज की तो पूरी कथा हम जानते हैं। और फाइनली लॉर्ड परफेक्ट्स यू, और इसमें एग्जाम्पल है नारद मुनि कि नारद मुनि बचपन में उनकी माता, केवल नारद मुनि अपनी माता के साथ रहते थे, छोटे से बालक थे, भगवान ने उनकी माता को छीन लिया। सोचिए, लगता होगा कि कितने क्रूर हैं भगवान, परंतु यदि भगवान वो नहीं करते तो नारद मुनि जो नारद मुनि बने वो नहीं बन पाते। और नारद मुनि ने आगे चलकर भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान आपने मेरी जो एक आसक्ति थी उस आसक्ति को आपने मुझसे उसका छुटकारा करवा के मुझे ये पथ दिया। और फिर भगवान ने तुरंत अपनी कृपा नहीं दी, नारद मुनि को कहा, नारद नाउ यू हैव टू परफेक्ट योरसेल्फ, अभी तक तुम अपक्व हो, तुम्हें पक्का होना है तुम्हारी साधना के द्वारा। तो वो जो उनके माता का देहांत, फिर उनका एकांत, और फिर जीवन भर जो उन्होंने साधना की अकेले, उसके द्वारा नारद मुनि परफेक्ट बने। So herein we see all the examples. God gives problems to direct, inspect, correct, protect, and perfect us. So problems will either defeat us or develop us. ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस दृष्टिकोण से लेते हैं. अब होता क्या है कि हम लोग ये जो हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी अभिलाषाएं हैं, इसमें इसको बुनकर हमारा पूरा जीवन बनाते हैं. तो इसको कैसे समझना है, ड्रीम्स और प्लान्स को कैसे समझना है. एक तरफ है अवर ड्रीम्स और दूसरी तरफ है कृष्णास प्लान. तो अक्सर हम तकलीफ किसको मानते हैं, तकलीफ या प्रॉब्लम का डेफिनेशन क्या है हमारे जीवन में. जब हमारे ड्रीम्स फुलफिल नहीं होते और हम भगवान का प्लान समझ नहीं सकते, या हमको ये लगता है कि भगवान का प्लान हमारे ड्रीम्स को खराब करना है, तब जाकर हम उसको तकलीफ मानते हैं. तो फिर अवर ड्रीम्स आर टेम्पररी, रिस्की एंड डेंजरस, वेर एज कृष्णास प्लान इज परमानेंट, सेफ एंड हेल्दी. तो हमने इसकी चर्चा की है कई बार कि हम लोग इस भौतिक संसार में हम क्या चाहते हैं. विशेष रूप से भारत में हम चाहते हैं कि हमको दोनों मिल जाए, है ना, बेस्ट ऑफ बोथ मिले. यदि आपको याद है, एक बार मेरे ख्याल से हमारे संडे भागवतम सीरीज में हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था. ये कॉन्सेप्ट है जैन चिकन कॉन्सेप्ट. जैन चिकन कॉन्सेप्ट क्या है, चिकन बिना प्याज लहसुन के, बिना प्याज लहसुन का चिकन. अगर किसी रेस्टोरेंट के होता ना जैन पाव भाजी, जैन ये वो, तो ये अगर आप पढ़ो जैन चिकन कैसा लगेगा सुनने में. लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, मेंटालिटी है. क्या मेंटालिटी है कि एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि प्याज लहसुन नहीं खा रहा हूं, मतलब स्ट्रिक्ट हूं, किसी धर्म का पालन कर रहा हूं, और दूसरी तरफ मेन मील क्या है, तंगड़ी कबाब. मेन मील वो है, लेकिन ये इसलिए कहा गया है इच्छा नहीं है लोगों में घर से मंदिर जाने की. समझ में आई, इच्छा नहीं है लोगों में घर से मंदिर जाने की, पर बेशक ख्वाहिश ये रखते हैं शमशान से सीधा स्वर्ग जाने की. जीवन भर हम हमारा जैन चिकन खाएंगे, तो इच्छा नहीं है मंदिर आने की, परंतु शमशान से सीधा स्वर्ग जाने की इच्छा है. ये जो ड्यूप्लिसिटी कलयुग में लोगों के अंदर रहती है उसके वजह से, और फिर अरे धर्म किसी काम का नहीं, जैसे कि वेइंग मशीन को गालियां देना, अरे ये कोई वेइंग मशीन है, 100 किलो दिखा रहे, कोई मेरा 100 किलो हो सकता है वजन. तो हम लोग अपना अपने जिसको बोलते हैं ना ख्याली पुलाव, सुना होगा ये आपने, ख्याली पुलाव, हमारे ड्रीम्स, जैसे वो शेख चिल्ली था, तो उस प्रकार से हम हमारे ख्याली पुलाव बनाते हैं. और उस क्योंकि ख्याली पुलाव में कितने भी आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, तो वैसे फिर हम हमारे पूरे जीवन का ये ख्याली पुलाव किसके थ्रू, मेरी ऐसी डिग्रियां होंगी, मेरे ऐसा घर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, फिर बाद में ऐसी गृहस्थी होगी, नाम शोहरत ये वो, हमारा पूरा ड्रीम्स ऐसे बनाते हैं कि जैसे भगवान ने पूरी सृष्टि मेरे लिए निर्माण करके छोड़ के गए हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति, वो अपने मित्र के बारे में फेसबुक से उसे पता चलता है कि उसका बचपन का मित्र उसने खोज लिया, कुछ 15-20 साल बाद अपने बचपन के मित्र को उसने खोज लिया फेसबुक के द्वारा, तो मिलना चाहता है। और उसे पता था कि ये बचपन में हम लोग जब स्कूल में थे तो एक नंबर का ये दफर व्यक्ति था, कोई पढ़ाई लिखाई में कुछ ठीक नहीं, तो ऐसे लगा कि इसको कि इसने अपने जीवन में क्या तरक्की की होगी, फिर भी जानने के लिए तो ये गया। इसे जब एड्रेस पता चला तो ऐसे धारावी जैसी झोपड़पट्टी के अंदर इसका घर, तो वहां गटर यहां वहां उधर से बचते हुए वो पहुंचता है उसके झोपड़पट्टी, परंतु झोपड़पट्टी के सामने उसका नाम लिखा हुआ है ऐसे एकदम सुनहरे नेम प्लेट पे, और नाम के बगल में उसकी डिग्रियां, एमए सबसे पहले तो, और एमए के बाद उसकी डिग्री लिखी है LLMP, और उसके बाद एक और तीसरी डिग्री, तो ये बहुत चक्का रह गया कि ये तीन तीन डिग्री, तीसरी डिग्री TDM, एमए LLMP TDM, इतनी सारी डिग्रियां, ये व्यक्ति ये ठीक से यूनिट टेस्ट पास नहीं कर पाता था अपना, और इतनी सारी डिग्रियां, और अगर इतनी सारी डिग्रियां हैं तो ये झोपड़पट्टी में क्यों रह रहा है, एक और उसको क्वेश्चन था। तो फाइनली उसको जब वो अंदर जाता है, मिलता है, उसे पहचाना मुझे, अरे ये वो सब हुआ, उनका प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुए पहले, फिर पूछता है ये जो माजरा क्या है, ये इतनी सारी डिग्रियां कैसे, तू एमए बन गया एमए, और ये LLM तो सुना था, ये LLMP ये पी के है, और ये TDM ये तो, ये डिग्री तो कभी सुनी नहीं हम। तो उसने फिर एक्सप्लेन किया ये डिग्रियां क्या, उसने कहा ऐसा है, अभी तू तो मेरा दोस्त है बचपन का, तू तो मुझे जानता था बचपन से, MA मतलब मैरिड अगेन, MA का फुल फॉर्म है मैरिड अगेन, वो डाइवोर्स हो गया था मेरा तो फिर से शादी की, तो इसलिए MA लगा दिया, मैरिड अगेन। अच्छा मैरिड अगेन, तो वो LLMP क्या है, LLMP, हाँ LLMP मतलब लटक लटक कर मैट्रिक पास, ये LLMP है, लटक लटक कर मैट्रिक पास किया। तो अब TDM क्या है, ये TDM ट्रक ड्राइवर ऑफ महिंद्रा। तो ऐसे उसने अपनी डिग्री लगाई, MA LLMP TDM, हम लोग हंस रहे होंगे, हम लोग अपने सपनों की डिग्रियां इस प्रकार से लगाते हैं, अवर ड्रीम आर लाइक दैट, और एक तरफ होते हैं हमारे ख्वाब, हमारे सपने, और दूसरी तरफ भगवान ने हमारे लिए एक प्लान बनाया है, हर एक शख्स, हर एक जीव के लिए भगवान के पास एक स्पेशल प्लान है, और वो प्लान क्या है इसे जानने के लिए आप लोग ठीक इसी समय अगले बुधवार को यहां पर आ जाना। जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।